ओम शांति। फोर इलेवन टू थाउजेंड वन की अव्यक्त वाणी है। एक होमवर्क तो अभी अभी करना है, एक न्यू पेज खोलना है डायरी का। नैनो में बिंदी बाप को समाये रखना, नैनो में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ है। मुरली का ये महावाक्य है। तो अपनी डायरी में बिंदु बनाना है, पूरा पेज, ये डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस सेम हो, ऐसे होल पेज, बिंदु 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 बिंदु, फिर उसी के नीचे दूसरा बिंदु, फिर उसी इसके नीचे दूसरा, पूरा पेज अभी बनाओ, आधा पेज कम से कम, आधा बाद में, बहुत धीरे धीरे और एकाग्रता से, फोकस एंड अटेंशन। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। स्टॉप, एक बार देखो कैसे बना, सही बना कि ऊपर नीचे हो गया। जब सेकंड लाइन होगी तो फॉलो फर्स्ट लाइन को करना है, जब थर्ड लाइन होगी तो फॉलो फर्स्ट लाइन को करना है, सेकंड को नहीं। सेकंड को फॉलो करेंगे तो इधर इधर चला जाएगा। फॉलो हमेशा फर्स्ट लाइन को ही करना है ताकि वो बिंदी सेम हो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, या फिर पेंसिल होगी और स्केल होगी तो पहले कॉलम्स बना लो और फिर उसके ऊपर करो। बिना कॉलम के बना सकते हैं। तो ये कार्य है आज का। तो आज के मुरली में बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग कर आते हैं। तो एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अनुभव करेंगे कि वतन से बाबा मुझसे मिलने के लिए भाग भाग के आ रहे हैं, वास्तव में आ रहे हैं, आसमान से उतर रहे हैं धरा पर, और मैं तैयार हूं। देखो वो धरा पर उतर रहा है, भक्त अजान कर रहे हैं। ओम शांति। तो सबसे पहला होमवर्क विजुअलाइजेशन, कि बाबा मुझसे मिलने आ रहे हैं, ये फर्स्ट होमवर्क। दूसरा होमवर्क है क्या, हिम्मतवान बच्चों के ऊपर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा करते हैं। तो एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें ऊपर बादल है और नीचे मैं, और वो बादल है बाप दादा और उससे वरदानों की वर्षा हो रही है। ऊपर बादल, बादल में लिखेंगे बाप दादा, इसमें से बूंदे, एक एक बूंद में एक एक वरदान, सुख शांति पवित्रता आनंद, और यहां पर मैं हूं। तो ये सेकंड होम, ये है सेकेंड होमवर्क, थर्ड होमवर्क ऑलरेडी बता दिया जो आधा कर चुके हैं, एक पूरे पेज में बिंदी 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 बिंदी, ये भी एक योग है, ये भी एक ध्यान है, ये भी एक मेडिटेशन है, फोकस है, अटेंशन है इसमें, कि बराबर उतने ही अंतर पर वो हो और एक के नीचे दूसरा हो, जब पूरा हो जाए तो ऐसे दिखे कि जैसे प्रिंट हो कोई, ठीक है। ये है थर्ड होमवर्क। फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों कंबाइंड होमवर्क है, बाबा साथी बच्चों को एक्स्ट्रा मदद करते हैं और दूसरा अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले। तो दो लाइट बनाने हैं, एक लाइट में मैं आत्मा, दूसरा लाइट बाप दादा, और दोनों लाइट साथ साथ चल रहे हैं, कंपेनियन पोस्टर, दोनों लाइट्स साथ साथ चल रहे हैं, कंपेनियन पोस्टर। दो लाइट है, एक गोल में मैं आत्मा, दूसरे गोल में बाबा। तो ये आज के चार होमवर्क है। वो लाइन ऐसे दिखनी चाहिए, इसमें बारीक है बट जैसे प्रिंट है, बिंदी बिंदी बिंदी। तो ये भी एक होमवर्क है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ कंबाइंड, तो चारों होमवर्क, पांचों महावाक्य कौन से हैं? एक बाबा आ रहे, दूसरा वरदान दे रहे, तीसरा नैनों में, तो बाबा आना, वरदान देना, नैनों में समाना, एक्स्ट्रा मदद करना और डायरेक्ट संबंध। एक्स्ट्रा मदद कर रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्ट संबंध जुड़ रहा है। तो ये पांचों होमवर्क को क्या करो, एक स्टोरी बना देना है। ये कार्य अभी अभी कर दिया तो सारे दिन भर अपने याद याद अपने आप याद रहेगा। क्या याद रहेगा कि बाबा आ रहे हैं, आकर क्या कर रहे हैं, वरदान दे रहे। वरदान देने के बाद क्या हो गए, बिंदी आंखों में समा गई, आंखों में समाने के बाद क्या हुआ, एक्स्ट्रा मदद मिल गई, एक्स्ट्रा मदद मिलने से क्या हुआ, डायरेक्ट संबंध जुड़ गया। तो बाबा का आना, वरदान देना, नैनों में समाना, एक्स्ट्रा मदद देना और डायरेक्ट संबंध जुड़ गया। तो ये हो गई योग की एक कमेंट्री। अपने आप ही दिन भर में अनुभव करना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं या कल्पना करते हैं, कल्पना और सत्य, हमारा अंतर्मन इसके भेद को नहीं जानता। जो कल्पना की जाए वो अंतर्मन उसे सत्य मानने लगता है। रियलिटी और इमेजिनेशन का अंतर सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। कोई भी इमेजिनेशन उसे दे दो, विजुअलाइजेशन दे दो, वो उसे सत्य मानने लगता है, चाहे विकार या पवित्रता दोनों। शरीर में वो सारे चेंजेस हो जाएंगे कल्पना के आधार से। कल्पना, इमेजिनेशन, आइंस्टीन ने कहा है, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ज्ञान से भी शक्तिशाली क्या है, कल्पना, जो हम कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि कल्पना में क्या है, दृश्य है, और वो अंतर मन में चला जाता है बहुत डीप। जैसे शास्त्रों में दिखाया है मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख गुरु हुए, नवनाथ, नव गुरु, नव जो नाथ पंथ के है उसमें मच्छिंद्रनाथ जो है उसका जन्म होता है। लोग कहते हैं माँ बाप से कि ये बालक बहुत ही अपशकुनी बालक है, वो माँ बाप उसको समुद्र में फेंक देते हैं, एक मछली उसे निगल लेती है, ऐसी कहानियां हैं। और वहां पर शिव और पार्वती धरती पर आते हैं और शिव पार्वती को संपूर्ण ज्ञान सुनाता है, इस सृष्टि का ज्ञान, कि हर एक आत्मा है, हर एक प्राणी में आत्मा है, हिंसा नहीं करनी है। तो वो जो मछली होती है ना, मछली के पेट में वो बच्चा होता है, वो वहां से सुन लेता है मच्छी के पेट से। और जो पार्वती होती है उसको तो नींद लग के वो सो जाती है वहां पत्थर पर, और शिव सुनाते रहते हैं, मछली के पेट का वो बच्चा सुनते रहता है। आखिरी में पूछता है समझ में आया, वो बच्चा बोलता है हाँ पूरा समझ में आ गया। तो वो देखता है ये आवाज किसकी, और पीछे देखता है तो पार्वती तो सो रही है, फिर किसने सुना इस सुनसान, क्योंकि ये ज्ञान अत्यंत गुप्त है। इसलिए वो देखते हैं कि ऐसी जगह पर उसको सुनाता है, ऐसी जगह धरती पर कि कोई ना सुने, पर ये बच्चा सुन लेता है। फिर उसे वरदान देते हैं कि यह दिव्य बालक होगा। फिर वो बच्चे का जन्म होता है, जन्म इन द सेंस एक दूसरे माँ बाप होते हैं जिनको बिल्कुल भी संतान नहीं होती है, वो नाव में जाते रहते हैं मछली पकड़ते, वहाँ ये मछली दिखती है, वो बच्चा जमीन पर छोड़कर फिर आकाशवाणी होती है कि यह दिव्य बालक है, इसकी तुम पालना करो। तो ये जो बच्चा होता है, अब वो कहाँ जन्म लिया उसने, मछलियों के जो मछुआरे हैं सा वहां उनका प्रसाद भी मछली है, खाते भी मछली है। तो ये बच्चा बचपन से कहता है मैं मछली नहीं खाऊंगा, अपने पिताजी को मछली पकड़ने नहीं जाने देता, पर कितने दिन कई सारी युक्तियां रचता है वो, पर उस गांव का तो भोजन ही मछली है। परंतु उसने कब सुना था ये, एकदम पेट में जब था तब ये सुन लिया था। तो उतना डीप चला जाता है उसके कि मैं आत्मा हूं और हर एक आत्मा है और किसी की भी हिंसा मुझे नहीं करनी है। अमृत वेला भी यही काम होता है, दिन भर कितना भी सुनाते रहो आत्मा वो नहीं होता है, पर अमृत वेला 2-3 घंटे इतना एक ही तो पॉइंट है बस, कि मैं आत्मा हूं देह नहीं, बस इसी पॉइंट को इतना गहराई में जाने दो अमृत वेला, इतना गहराई में सबकॉन्शियस रिवायरिंग, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, कि वो अपने आप ही होता रहे। तो उस बच्चे को वो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करता, उस गांव का सारा विद्रोही बन जाता है, वो गांव उसके खिलाफ हो जाता है कि ये मछली नहीं खाता है। वो कहता है मैं, वो मेरे मित्र है, उनमें प्राण है, मैं उनको कैसे खाऊं, वो मेरे दोस्त है, मैं उनको खा ही नहीं सकता। तो ये प्रभाव था क्योंकि उसने तब सुना हुआ था वो। तो जो भी हम अपने अंतर मन को सुनाते हैं शांत चित्त से, वो अंदर भीतर चला जाता है। तो बाबा आ रहे हैं, वरदान दे रहा है, नैनों में समा रहा है, एक्स्ट्रा मदद मिल रही है और डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ रहा है। अभी हमने ये एक इमेजिनेशन क्रिएट करके रखा है, अब हमारे अंतर मन को ये नहीं पता ये सत्य है या इमेजिनेशन है, परंतु हमने ये सोच के रखा है कि एक्स्ट्रा मदद मिलेगी तो अपने आप मिलेगी, क्योंकि वो पूरी कायनात उसे अब सत्य करने के पीछे लग जाएगी, अपने आप अस्तित्व ही उसे सत्य कर देगा इस वाक्य को। तो जो हमने सोचा वो सत्य हो जाएगा। तो टेक्स्ट टू ड्रिल में कन्वर्ट कर देना है, मुरली क्या है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को क्या कर देना है, ड्रिल में कन्वर्ट करना, अर्थात उसे प्रैक्टिकल बना देना। तो ये है आज के कार्य। और दूसरा इंस्ट्रक्शंस, जैसे जो भी यहाँ वक्ता होंगे आते हैं वो धीरे धीरे बोलना है, एकदम फास्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि लिख रहे हैं सभी, तो बहुत फास्ट नहीं, धीरे धीरे। और यदि कोई कमेंट्री भी कराता है तो कमेंट्री भाषण की तरह ना हो, उसका टोन, स्लोनेस, पिच, वॉइस पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉजेस, वो सारी चीज़ें उसमें हो। और लास्ट बात, 14 तारीख को, 14 तारीख को क्या है, एग्जाम है,